जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अभी जो भजन हमने पढ़ा था उसका अर्थ बहुत सुंदर है। तो ये जो भजन श्री सार्वम भट्टाचार्य ने लिखा है उसका अर्थ इस प्रकार से है, ये महाप्रभु के जो शारीरिक कांति है उसका वर्णन कर रहे हैं और महाप्रभु के अलग अलग भावों का। तो उसका अर्थ इस प्रकार से है, उज्ज्वल गौर वर्ण देहधारी सदा सर्वदा श्री वृषभानंदिनी श्रीमती राधिका के भाव से विभावित होकर विचित्र विलासकारी एवं अपनी कृपा के लेश मात्र से ही त्रिभुवन को पवित्र करने वाले शची नंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। शची तनय, तनय मतलब पुत्र, जिनका हृदय गदगद अंतर भाव विकारम दुर्जन तर्जन नाद विशालम, जिनके हृदय नाना प्रकार के भावों से सर्वदा गदगद रहते हैं और जिनका विशाल हुंकार भक्ति विमुख पाखंडियों के भय उत्पन्न उत्पादनकारी है। दुर्जन तर्जन नाद विशालम भव भय बंजन कारण करुणम तम प्रणमामित श्री चतितनयम, उन सचिंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। अरुण अंबर धर चारु कपोलम, जो अरुण अर्थात सूर्य के या गेरुए वस्त्र के मरण के वस्त्र धारण किए हैं, जिनके चारु कपोल बड़े ही मनोहर हैं। इंदु विनिंदित नख चय रुचिरम, उनके जो नख समूह हैं जो नेल्स हैं उसकी कांति छटा पूर्ण चंद्र की शोभा को भी मात करती है। जलपित निज गुण नाम विनोदम, और जो अपने नाम गुण के कीर्तन में अतिशय आनंद प्राप्त करते हैं क्योंकि कृष्ण है और कृष्ण के नाम गुणगान करते हैं, उन सचिंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। विगलित नायन कमल जलधारम भूषण भवरस नवरस भाव विकारम, जिनके नयन कमलों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। नवरस भाव विकार, जिनके श्री अंगों के भूषण स्वरूप हैं। और गति अति मंथर नित्य विलासम तम प्रणमामित श्री चतितनयम, और नित्य विलास हेतु जिनकी गति अति मंथर है उन सचिनंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजिर रंजित पद युग मधुरम, जिनके नुपुर शोभित श्री चरण युगल की गति अतिशय मनोहर है। उन चंद्र विनिंदित सुशीतल वदन विशिष्ट सचिंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। धृत कटि डोर कमंडलु दंडम दिव्य कलेवर मुंडित मुंडन, जिन्होंने कटि तट में कमर में जनेऊ डाल रखा है, धृत कटि डोर दौर बहिर्वास एवं हाथ में दंड कमंडल धारण कर रखा है। दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम, मुंडन की आभा अति भव्य जिनका मस्तक है जो अतिशय दिव्य कलेवर विशिष्ट है। दुर्जन कलमश खंडन दंडम, जिनका दंड दुर्जनों के पाप समूह का खंडनकारी है, उन सचिंदन श्री गौर हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। भूषण भूरज अलका वलितम कंपित बिंब अधर वर रुचिरम मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकम तम प्रणमामित श्री चतनयम, जिनकी अलका वली अर्थात नृत्य हेतु उठी धूलि रूप भूषण विशिष्ट है, जिनका कांपता व बिंब सदृश अरुण अधर बड़ा ही मनोहर लगता है, और मलयज चंदन द्वारा विरचित उज्ज्वल तिलक से सुशोभित उन सचिंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। निंदित अरुण कमल दल नयनम आदनुलंबित श्री भुज यगलम, जिनके अरुण नयन कमल दल की शोभा को तिरस्कार करने वाले हैं, जो आदनुलंबित भुजाओं वाले हैं, उन नृत्य वेशयुक्त कलेवर वाले सचिंदन श्री गौर हरि को प्रणाम करता हूँ। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो पिछली बारी ये मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर रुकना। तो उसमें 99 तो प्यार तक पढ़ा था, तो अभी 100 से लेके 105 तक कोई तात्पर्य नहीं है और 106 में ये तात्पर्य है। तो आप सबको प्रसंग मालूम होगा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे थे वृंदावन की ओर, और नित्यानंद प्रभु ने उनको जो है भटका करके कहाँ पे भिजवा दिया, भेज दिया शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पे। और नित्यानंद प्रभु साथ साथ आ रहे थे, और महाप्रभु के साथ में आते हैं और अद्वैत आचार्य उनको घर में प्रसाद खिलाते हैं। और ये पूरा जो है महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं जब वो 90 वर्ष की उम्र से ऊपर हैं, और इससे 2 अध्याय पहले उन्होंने पूरा जो महाप्रभु का अंत्य लीला तक है समराइज करके लिख के दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कब वो शरीर छोड़ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी, और उसके बाद में 3रा अध्याय है, तो और उस स्थिति में भी चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है अद्वैत आचार्य के घर पे, उसके लिए पूरा एक चैप्टर उन्होंने लिखा है। बड़े विचित्र बात है। तो आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्यों किया है ऐसा वर्णन उन्होंने। तो आई जस्ट थॉट ऑफ सम वेरी नाइस पॉइंट विच केम टू माई माइंड। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक चैप्टर लिख रहे हैं। फिर मैंने और भी चैप्टर था, मैंने कुछ और सेक्शंस देखे, तो देन मेरे को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस अभी प्यार पढ़ने के बाद आपसे शेयर करने का। तो और फिर नित्यानंद प्रभु जो है, महाप्रभु कहते हैं मैं इतना सारा प्रसाद नहीं लूंगा। पहले प्रसाद की रचना हुई है कि 50-50 डोंगे प्रसाद के अंदर इस प्रकार से थे, आपने सुना होगा पहले। और लेकिन मैं सन्यासी हूं, तो अद्वैत आचार्य क्या कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में इतना सारा खाते हैं, जो है 52 बार ये 56 व्यंजन खाते हैं, तो सब मालूम है। तो ये वाक चातुर्य छोड़ दीजिए, अपनी जो है अपनी चतुराई छोड़ दीजिए और चुपचाप प्रसाद लीजिए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं बस 3 दिन से मैं भूखा हूं, इतना सा प्रसाद है, ऐसे लग रहा है मुझे आज भी उपवास करना पड़ेगा। और अद्वैताचार्य कहते हैं मेरे पास तो इतना ही है। और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक प्रकार से मजाक चल रहा है, और वास्तविक रूप में बहुत प्रेम पूर्वक एक दूसरे का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु जो अपने हाथ उठा के चावल फेंकते हैं जमीन पे कि ये कोई चावल है, ऐसा चावल, और उस चावल के कुछ कण स्पर्श करते हैं अद्वैताचार्य के दिव्य देह पर। और जैसे ही वो चावल के कण उनके स्पर्श करते हैं, तुरंत जो है वो भावावेश में आके नृत्य करने लगते हैं। बोले त्रिभुवन के तीनों लोकों के अंदर ऐसी कृपा किसी को प्राप्त नहीं होती, तो ये कृपा मुझे प्राप्त हुई है कि इस अवधूत के हाथ का महाप्रसाद मुझे मिला इस प्रकार से। और फिर दोनों प्रसाद लेते हैं, और फिर पिछली बार इसके ऋषि कुमार प्रभु ने बताया था महाप्रसाद के वर्णन के बारे में, और अब प्रसाद लीला समाप्त हो चुकी है। तो अब ये सौमा प्रयाद इस प्रकार से है, क्षते का सन्यासी यदि कराई भोजन तबे ए अपराध हई बेखंडन। तो अद्वैताचार्य जब चावल फेंका है, तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तुमने मेरे पर जूठा चावल फेंका है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये भगवान कृष्ण का महाप्रसाद है, ये जूठन थोड़ी है, तुमने इसे जूठन समझा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सेवा अपराध सुना था, नाम अपराध सुना था, धाम अपराध सुना था, वैष्णव अपराध सुना था, अब ये प्रसाद के प्रति अपराध है, है कि नहीं? हालांकि प्रसाद पाना ये बहुत सरल विधि है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। भक्ति भेद भाव महाराज कहते हैं यू कैन ईट योर वे बैक टू गॉड। और जिसमें श्रीधर स्वामी महाराज जब शरीर त्याग करने वाले थे, तो इंद्र स्वामी महाराज उनको फ्लाइट में लेके आए, और महाराज को हेपेटाइटिस सी था, पूरा लीवर उनका स्वोलन था और आधा बॉडी पर्पल हो चुका था, और महाराज बहुत बड़ी मूर्छित हो रहे थे, अनकॉन्शियस हो रहे थे फ्लाइट के अंदर भी। और जल्दी फ्लाइट पर जाने से पहले मेडिकल फिटनेस रहता है कि मतलब कोई फ्लाइट में शरीर ना छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से इस दिन महाराज उनको इस प्रकार से लेके आए कि नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। और तो महाराज जब थोड़ी देर के लिए अचेतन थे, फिर जब वो कॉन्शियसनेस में आए, तो इंद्र दुम महाराज से कहते हैं यू हैव सम प्रसाद। तो अब फ्लाइट में था, तो महाराज के पास जो प्रसाद था वो उनके डाइट के लिए बहुत ठीक नहीं था, कुछ सैंडविच ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला दिस नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ही सेड इट्स बेटर टू डाई टेक प्रसाद एंड डाई देन टू लिव विदाउट फास्ट देन टू डाई विद फास्टिंग। एनी वे हैव टू डाई बेटर टू ईट एंड डाई। मतलब प्रसाद खा के शरीर छोड़ना ज्यादा अच्छा है कि भूखे रह के छोड़ने से अच्छा। तो जो है प्रसाद की बहुत महिमा है हमारे श्रीधर स्वामी महाराज का। प्रभुपाद डॉग जो कैप लगाते थे, बॉम्बे में उनका रूम है अभी, उसके अंदर कैप रखा है अभी जूहू टेम्पल के अंदर, उसमें लिखा है प्रभुपाद डॉग और उनका सब सामान अभी भी श्रीधर महाराज का रूम है जूहू टेम्पल के अंदर। तो प्रसाद को झूठा बोला है, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं बहुत बड़ा अपराध किया, ये प्रसाद के प्रति अपराध है बहुत बड़ा ऐसे करके। इसका मतलब ये नहीं हम एक दूसरे झूठा खाएं लाइन, लेकिन प्रसाद को प्रसाद झूठा नहीं होता, कहने का ये है महाप्रसाद जो है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त लोग कभी जो है एक दूसरे की प्लेट से निकाल के खाना शुरू कर दें। कभी कभार ऐसा हमारे वैष्णव समाज बहुत होता है, तो हमें याद है दो बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो सीनियर डिवोटीज ने कैसा बोला, बोले किसी को महाप्रसाद चाहिए तो डस्टबिन बहुत सारा महाप्रसाद है वहां से निकाल लीजिए, बाकी भक्तों को परेशान मत कीजिए, प्रभु जी महाप्रसाद, प्रभु जी महाप्रसाद। और बोले कौन सा महाप्रसाद, रसगुल्ला वाला महाप्रसाद बस। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा महाप्रसाद चाहिए, बस एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए। तो नित्यानंद इस प्रकार से कह रहे हैं, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। तो अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, अब मैं फिर से किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि सन्यासी ने ही मेरे ब्राह्मण स्मृति नियमों को बिगाड़ा है। वो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जो है बोल रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़े स्मार्ट ब्राह्मण है और नित्यानंद अवधूत है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो दोनों इस प्रकार से रोल दे रहे हैं और एक प्रकार से वो स्मार्ट ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं। दैट इज अ होल प्रसंग जो है इस प्रकार से कि जो नियम पालन करते हैं वो ब्राह्मण। तो अद्वैताचार्य ने बोल रहे हैं कि मैं किस सन्यासी को और नहीं बुलाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे स्मार्ट ब्राह्मणों के नियमों को तोड़ दिया है। और इसके बाद अद्वैताचार्य ने फिर इस प्रकार से उनका हंसी मिलाप हो रहा था और दोनों प्रभु ने नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और अद्वैताचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम बिस्तर पर लेकर विश्राम करने के लिए लटा दिया। श्री अद्वैताचार्य ने दोनों जनों को लौंग तथा इलायची के साथ तुलसी मंजरी खिलाई, इस तरह उनके मुखों में सुगंध युक्त स्वाद उत्पन्न हो गया। श्री अद्वैताचार्य ने दोनों जनों के शरीरों पर चंदन का लेप किया और फिर उनके वक्षस्थलों पर सुगंधित फूल की मालाएं पहनाई। जब महाप्रभु बिस्तर पर लेट गए तो अद्वैताचार्य उनके पांव दबाना चाहते थे किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था, अतएव वह उनसे इस प्रकार बोले। तो ये आज का प्यार है, हमारे से दबा सकते हैं। बहुत नाचा ले तुम्हें छाड़ नाचान, बहुत नाचा ले तुम्हें छाड़ नाचान, मुकुंद हरिदास लैया करई भोजन, मुकुंद हरिदास लैया करई भोजन, बहुत नाचा ले तुम्हें छाड़ नाचान, मुकुंद हरिदास लैया करई भोजन। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, अब तो यह आदत छोड़ो, मुकुंद और हरिदास के साथ जाकर भोजन करो। बहुत नाचाले तुम्हें छाड़ नाचा है अद्वैत आचार्य, अब यह आदत छोड़ो। बिकॉज इससे पहले अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु ने को चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे तब की बात है, अभी सातवां अध्याय आएगा, तब महाप्रभु सभी भक्तों को कह रहे थे कि जैसा आप नचाना चाहो मैं वैसा नाचूंगा, मैं तो आपके हाथ में कठपुतली हूं एक। तो महाप्रभु इस प्रकार से जो है भक्त और भगवान के बीच का आत्म तात्पर्य इस प्रकार से है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर अद्वैताचार्य को यह बतला रहे हैं कि सन्यासी के लिए न तो अच्छे बिस्तर पर लेटना शोभा देता है, न लौंग इलायची खाना और न ही पूरे शरीर पर चंदन लेप करना, उसे सुगंधित फूल मालाएं स्वीकार करना और शुद्ध वैष्णव से पांव दबाना भी शोभा नहीं देता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे पहले ही मुझे नाच नचा दिया है, कृपया करके अब तो रुको, अब जाकर मुकुंद तथा हरिदास का भोजन करो। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत जो है इसको बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, भगवद्गीता इस ABCD एंड भागवतम जो है ग्रेजुएट स्टडी, चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है बहुत ही रिफाइंड तरीके से, बहुत ही बारीकियत से किन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, मुख्यतः भगवान और भगवान के बीच में संबंध, मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, तो उनके संबंध इस प्रकार से, या राधा रानी और कृष्ण भी अभिन्न है तो उनका क्या भाव है वो, या फिर भगवान और भक्तों के बीच में संबंध, इसमें ये एक और चीज बताइए किस प्रकार भक्त भगवान के साथ संबंध बनाते हैं और भगवान भक्त के साथ संबंध बनाते हैं, और तीसरी चर्चा जो की है वो है भक्तों और भक्तों के बीच में संबंध, कि दो भक्त जो हैं वो आपस में किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं। तो और कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद कहते हैं इज वेरी सिंपल, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है बहुत सिंपल है। और क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? तीन शब्दों में बताया जाए तो चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। प्रभुपाद कहते हैं कि आप जब आप भगवान के नामों का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, कीर्तन करेंगे आप एक्स्टैटिक होंगे तो क्या होगा, आप नृत्य करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं स्मॉल चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट, हमने प्रभुपाद कहते हैं कि हमने देखा छोटे बच्चे भी आते हैं नृत्य करते हैं वो, और जब आप थक जाओ तो क्या करो, प्रसाद, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, वेरी सिंपल प्रोसेस। और पूरे चैतन्य चरितामृत के अंदर आप देखेंगे तो अनेकों अनेकों जगहों पे केवल इसी का वर्णन है। कैसे है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं उत्साहित होकर, फिर कीर्तन समाप्त हो गया, सब प्रसाद ले रहे हैं, फिर अगले दिन की घटना क्या है, सुबह उठेंगे फिर कीर्तन कर रहे हैं और फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो जो हमारा अल्टीमेट एम है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो बहुत सुंदरता से चैतन्य चरितामृत में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि ये चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग कभी अकेले नहीं होती। पूरे चैतन्य चरितामृत के अंदर भी हम देखेंगे तो महाप्रभु कीर्तन नहीं, वो संकीर्तन कर रहे हैं भक्तों के साथ मिलकर। सो दैट चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग इज इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में रहकर के भगवान के नाम का गुणगान करना, नृत्य करना और प्रसाद ग्रहण करना, यही वास्तविकता में कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस है जिसका हम अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सिंपल बट नॉट ईजी, बिकॉज द डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जो है बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है, इसके लिए दृढ़ता लाना आसान नहीं है इतना, जिसका पालन करना ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी स्वाभाविक स्थिति है, इज अ मोस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारी चेतना है उसकी जो सबसे स्वाभाविक स्थिति है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत है। हो सकता है भौतिक समाज के संपर्क में आने से हमें लगे कि बिजनेस की या कॉम्पिटिशन की या द्वेष की चेतना जो है ये नेचुरल स्टेट है और कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत डिफिकल्ट है, अननेचुरल है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो जीव की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति जो चेतना है वो है कृष्ण भावनामृत, कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, जो है कृष्ण भावना जो है ये मोस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जो है केवल भक्तों की संपत्ति के संग में किया जा सकता है। एंड चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया किस प्रकार जो भक्त आपस में मिलते हैं वो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करने का संबंध बनाते हैं। हो सकता है हमने जो देखा हो या हमने सुना हो या जो हम व्यवहार कर रहे हो वो एग्जैक्टली जिस प्रकार महाप्रभु चाहते हैं वैसा ना हो, लेकिन महाप्रभु अपने खुद के और अपने पार्षदों के व्यवहार से, उनकी शैली से, उनके जीवन शैली से ये हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हर भक्त को जो है कृष्ण भावना का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो कि ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। क्योंकि महाप्रभु की लीलाओं के अंदर हर प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग आश्रमों अलग अलग वर्णों में सिचुएटेड, लेकिन सब जो हैं भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना सब मिलकर के संकीर्तन करते हैं। और वो संकीर्तन पॉसिबल होता है संघ में किया हुआ कीर्तन, बेसिकली कि भक्तों के संघ में कीर्तन। चौथा जो इसके अंदर विशेष चीज है वो है भक्तों का संघ, कि जब भक्त आपस में मिले तो वो फिर दो चीजें करते हैं, दे ग्लोरीफाई कृष्ण, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि वो भगवान के बारे में गुणगान करते हैं हमेशा, या फिर भक्तों के बारे में गुणगान करते हैं। हम देखेंगे हर भक्त जो मिल रहा है वो दूसरे भक्त का गुणगान कर रहे हैं इसमें, या तीसरे भक्त का गुणगान कर रहे हैं, जो भक्त मौजूद नहीं है उनका गुणगान कर रहे हैं। और महाप्रभु जब अपने भक्तों गुणगान करते थे ऐसा लगता था उनके पांच पांच मुख हैं। तो ये बहुत विशेष बात है कि महाप्रभु हर भक्त के पर्टिकुलर गुणों को जानते थे और उनको बहुत प्रसन्नता से और भर करके जो है गुणगान करते थे अपने भक्तों का। और यहां पे उसी प्रकार वो अद्वैताचार्य का भी गुणगान कर रहे हैं कि अद्वैताचार्य तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, है ना, कि मैं आपके हाथ में क्या हूं, एक कठपुतली हूं, जैसा आप चाहते थे मैंने वैसा किया, हालांकि मैं सन्यासी हूं और ये शोभा नहीं देता कि मैं इतने सारे व्यंजन खाऊं, उसके बाद में आप इतने आरामदायक बिस्तर पे हमको लेटाओ, फूल माला डालो, चंदन से लेप करो, लौंग इलायची इत्यादि तुलसी मंदिरी हमारे मुख में डालो, बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर सकता। दैट इज कृष्णा कॉन्शियस प्योर लव। एक सन्यासी का धर्म है कि वो कुछ, वैराग्य का जीवन है कि वो कुछ भी इस प्रकार से सुख सुविधा को ग्रहण ना करें, सादा जीवन, उच्च विचार, उसका जो पूरा स्टेट है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में एब्जॉर्ब रहे। और गृहस्थ जीवन में जो भक्त हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य ऑफर एंड सर्व। वो सन्यासियों या जो इस प्रकार से जो वर्णाश्रम के अंदर जो सबसे सर्वोच्च स्थिति पे जो सन्यासी है उनकी सेवा करना, उनको प्रसाद खिलाना या उनको दान दक्षिणा इत्यादि देना। और सन्यासी का धर्म है, अगर मायावती सन्यासी तो वो लेते नहीं, लेकिन वैष्णव सन्यासी हैं अपने लिए नहीं लेते, वो लेते हैं। और उनका कर्तव्य शत प्रतिशत गुरु और कृष्ण की सेवा में स्वीकार करना, को ऑफर करना, आगे ऑफर करना। ये सन्यासियों का धर्म है कि शत प्रतिशत वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार का आचरण है। लेकिन जो प्रेम का संबंध है, जो वास्तविकता में प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज बियॉन्ड वर्ण एंड आश्रम। यहां पे हम देखते हैं कि अद्वैताचार्य का जो भाव है, कृष्ण भाव का जनार्दन है महाप्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, तो उससे बद्ध होकर महाप्रभु एक प्रकार से संन्यास धर्मों के जो सोशल एटिकेट्स हैं, जो सामाजिक नियम हैं, उनको भी ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज लोअर। लेकिन भक्तों का बीच का वैष्णव आध्यात्मिक आदान प्रदान है वो उच्च स्तर का है। तो कृष्ण कॉन्शियस लव इज बियॉन्ड ऑल सोशल एटिकेट्स। और यही चैतन्य चतुर्मठ की सबसे विशेष बात है, व्हाइट इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। क्यों? कि किस प्रकार भक्त आपस में आचरण करते हैं, किस प्रकार प्रेम का आदान और प्रदान करते हैं भक्त और भगवान, ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर मध्य लीला का अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वह है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। तो महाप्रभु जो है अभी शांतिपुर से, एंड यहां अभी सची माता आएंगी, फिर कुछ समय महाप्रभु रुकेंगे और सची माता बोलेंगे कि आप वृंदावन ना जाके कहां जाओ, जगन्नाथपुरी। और महाप्रभु जब रास्ते में जाते हैं तो रेमुना में जाते हैं और वहां पे वो सभी भक्तों को माधवेंद्रपुरी कथा बताते हैं। सो दे आर ग्लोरीफाइंग माधवेंद्रपुरी। और उनका क्या संबंध है किनके साथ? खीरचोर गोपीनाथ जी के साथ। फिर और आगे बढ़ेंगे तो महाप्रभु कहां पहुंचते हैं, किस जगह पे? साक्षी गोपाल। तो उसके अगला चैप्टर है साक्षी गोपाल के कार्यकलाप। तो भगवान और भक्तों के बीच फिर क्या संबंध है? इसके बाद अगला सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति जो प्रसंग है, किस पर सार्वभौम भट्टाचार्य का जो है महाप्रभु उद्धार किया। उसके अगला महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा, महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत जाते हैं, वहां किससे मिलते हैं? रामानंद राय। तो अगला अध्याय है चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की वार्ता। और उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा है और वहां अलग अलग कूर्मा ब्राह्मण और सब इत्यादि का महाप्रभु उद्धार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज गोइंग ऑल ओवर एंड एसोसिएटिंग विद वेरियस डिवोटीज एंड डिलीवरिंग देम, डिवोटीज और नॉन डिवोटीज बोथ। तो किस प्रकार प्रेम का आदान प्रदान है, जो रूप गोस्वामी बताते, ददाति प्रति गृहाते गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। देखिए भक्तों का संहिता महत्वपूर्ण है, इसलिए उपदेशामृत के अंदर भी तीन श्लोक के अंदर जो है रूप गोस्वामी भक्तों के संघ पर चर्चा करते हैं। 11 श्लोक हैं, उसमें 3 श्लोक डेडिकेटेड है किस प्रकार भक्तों का संघ किया जाए। चौथा पांचवा छठा कृष्णेति यस्य गिरिता मनसा आद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादिषु हृदयम् से संघ लभ्यः। कि भक्तों के संघ में रहते हुए किस पर डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए हमें जो है कनिष्ठ मध्यम और उत्तम वैष्णव के ऊपर। और उसके आगे बता रहे हैं फिर भी दृष्टि स्वभाव जनतेष्ट दोष प्राकृतत्व यह भक्त जन से पश्चेत। कि जो भक्त हैं जिस पर गंगा के जल के अंदर कई बार बुलबुले उठते हैं, नीर धर्म ही पानी का, तो ये तो गंगा के जल का नियम ही है कि उसमें बुलबुले उठेंगे। लेकिन जो व्यक्ति गंगा का जल देखता है वो क्या करता है? उन बुलबुलों को साइड कर देता है और गंगा के शुद्ध जल से आचमन करता है। उसी प्रकार से हो सकता है एक प्राकृत भक्त के अंदर कुछ दोष हो, हमें दिखते हो, लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से गंगा का हम हटा देते हैं वैसे ही भक्ति के प्योर कृष्ण का से देखना चाहिए, और ये दोष तो रहेंगे इनको साइड देखना चाहिए इस प्रकार से। सो ही गिव्स अ वार्निंग। तो 3 श्लोकों के अंदर रूप गोस्वामी केवल यही बता रहे हैं कि इस पर भक्तों से संग किया जाए। और चैतन्य महाप्रभु तो पूरा इसी पर डिस्क्राइब किया गया है कि सब भक्त संग, चैतन्य चट्टामृत और चैतन्य भागवत विशेषकर, विशेषकर चैतन्य भागवत के अंदर तो अमेजिंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन डिवोटीज एक्सप्लेन। तो अब ये देखें हम अब चैतन्य महाप्रभु का अद्वैताचार्य के घर रुकना, सोचिए आप ना कि चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य इसमें किस प्रकार से अद्वैताचार्य का जो गृहस्थ आश्रम के अंदर है वो सन्यासियों को बुला रहे हैं और प्रसाद ऑफर कर रहे हैं, और महाप्रभु हिचकिचा रहे हैं कि वो सन्यासी है वो नहीं लेंगे, लेकिन अद्वैताचार्य उन्हें फिर भी खिलाते हैं और महाप्रभु प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। सोचिए बिल्कुल उस प्रकार से आपने अधिकार, कई सारे भक्त यहाँ पर गृहस्थ आश्रम के अंदर है, कईयों के घर में गौनिता जी के विग्रह होंगे, आप उनके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं और उसके बाद में आप भगवान को भोग लगाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों आसन में बैठ के उस भोग को स्वीकार करना शुरू कर दें तो आपको कैसा लगेगा? बस अच्छा लगेगा। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो लग जाए, अभी तो हमें पता है कि हमें लगता है कि हम उस स्टेज पे नहीं है, तो हमें लगता है कि वो मूर्तियां हैं तो खाएंगे नहीं खाएंगे पता ही, प्रसाद ऑफिस आना है कब आएगा, शायद हम टाइम देख रहे हो कब हम प्रसाद लेंगे, ऑफिस जाना है या टिफिन पैक करना है कुछ भी। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप इस प्रकार से इस गौर पूर्णिमा उत्सव पे भगवान के व्यंजन बनाइए और पता लगे महापुरुष तो बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज परफेक्शन ऑफ कुकिंग है कि नहीं। उस भक्त का उसका चाहिए क्या जीवन के अंदर, इधर इसी के लिए हम सब जो भी साधना भक्ति प्रयास कर रहे हैं। और अद्वैताचार्य के घर पे जो जो उन्होंने बनाया प्रसाद, सीता ठाकुरानी और अद्वैताचार्य ने, वहां पर पर्सनली स्टेकिंग क्या है ना, सोचिए अद्वैताचार्य के क्या जो है व्हाट एक्सटेसी वुड बी इन अद्वैताचार्य, किस प्रकार के वो भाव विभोर होंगे जो है। तो आई वाज थिंकिंग कि चैतन्य चेतावन के अंदर की चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग क्यों प्रसाद के बारे में इतना बताया गया, पूरा अध्याय के बारे में केवल प्रसाद प्रसाद, अभी 100 पयार हो गए लगभग केवल प्रसाद के बारे में चर्चा है और अगले और लगभग 100 पयार लगभग होंगे जिसके अंदर केवल डिस्क्रिप्शन होगा किस प्रकार से कीर्तन किया कैसे नृत्य किया बस। और जितने दिन महापुरुष शांति में रुकेंगे रोज शाम को अद्वैताचार्य कीर्तन करते हैं नृत्य करते हैं, महापुरुष कीर्तन करते हैं नृत्य करते हैं भाव वेश में आते हैं, नित्यानंद कीर्तन करते हैं भाव वेश में आते हैं, 100 प्यार के अंदर केवल कैसे कीर्तन नृत्य किया इसमें और कुछ भी नहीं है। चैतन्य चेतावन के अंदर देखा जाए दिस इज द फिलोसॉफी, फिर महापुरुष आगे जाएंगे फिर रस्ते में कीर्तन करेंगे डांस करेंगे लोगों का उद्धार करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो कृष्णा कॉन्स इज वेरी सिंपल, इसका अर्थ ये है कि हमें भी अपने जीवन के अंदर जीवन शैली के अंदर भगवान के नामों का जप कीर्तन और नृत्य को बहुत अधिक और प्रसाद को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए जो है, बहुत ध्यानपूर्वक हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान के नामों जब कीर्तन करें या नृत्य करें तो ये बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी जब वेस्ट के अंदर थे तो अर्ली डेज में उनके डिसाइपल्स लिखते हैं प्रभुपाद जी की जो प्रचार की शैली थी बहुत सिंपल थी, आपको देशपाल पात्री अनुसार प्रभुपाद बहुत चतुर भी थे, प्रभुपाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट अकाउंट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, लेकिन विशेषकर जब पाश्चात्य देशों में प्रीचिंग शुरू किया था उन्होंने तो प्रभुपाद का एक्सेंट वॉज वेरी हैवीली बंगाली, जो इंग्लिश एक्सेंट था उसमें बहुत बंगाली थी, वहां के लोग ज्यादा समझ नहीं पाते थे। और प्रभुपाद भी जब जा रहे थे जलदूत ने प्रेयर लिखा भक्ति नाई वेदे नाई नामे खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, कि मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है लेकिन एक चीज है वो क्या है हरिनाम में पूर्ण विश्वास है मुझे, नामे खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मुझे तो भक्ति वेदांत शीर्षक मिला है ये सार्थक हो। इस पर प्रभुपाद बहुत विनम्रता से प्रार्थना लिखते हैं जलदूत के ऊपर। और प्रभुपाद जब टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में जाते हैं या उसके बाद में भी प्रभुपाद के जब भी उन्होंने कई जगहों पर ऐसे मंडे बैठने से फ्राइडे क्लासेस शुरू किया बटल पेंसिल्वेनिया में जब थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद क्या करते थे 45 मिनट कीर्तन करते थे पहले ऑलमोस्ट आधा घंटे से 45 मिनट कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन ऐसा होता था हर किसी व्यक्ति को नए तरह हिप्पी को भी लगता था कि वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं ऐसे करके, तो सो पोटेंट इतना स्पिरिचुअल सचार कीर्तन होता था। और उसके बाद प्रभुपाद की क्लास पर हाफ एन आवर आधा घंटा प्रभात क्लास देते थे, उसके बाद फिर 45 मिनट से एक घंटा फिर प्रभात कीर्तन करते थे, और ये जो कीर्तन होता था पीपल यूज टू गो कंप्लीटली क्रेजी मैड ऐसे करके लगते, और प्रभुपाद आंख बंद करके कीर्तन करते थे और हर व्यक्ति प्रैक्टिकली और ट्रांसपोर्टेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे होता था। और उसके बाद सबको मालूम है क्या प्रसाद प्रभुपाद प्रभुपाद इतने चतुर थे प्रभुपाद को मालूम था भी वो गुलाब जामुन वहां पर रखते थे प्रभुपाद और उसका जार रखा हुआ था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा केवल उन्हीं को मिलेगा जो क्लास में बैठेंगे। तो प्रभुपाद वेरी इंटेलिजेंट, उनको मालूम है कि क्या मेडिसिन है कैसे देनी है ना खाली प्रसाद लेके चले जाएंगे तो फायदा तो होगा उतना फायदा नहीं होगा, अब भगवत वाणी तो समझ आए या नहीं समझ आए लेकिन उससे उनका शुद्धिकरण होगा क्योंकि एक प्रसाद हम जीवा से कर सकते हैं और दूसरा महाप्रसाद है, जो महाप्रसाद के बारे में चर्चा करते हैं भक्तों को उचिष्ट मिल जाए उसका एक अर्थ ये भी है जो भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, उसका एक मुख्य पार्षद ये भी है जो शुद्ध भक्त है या आध्यात्मिक गुरु हैं उनके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी जो कृष्ण कथा है वो भी महाप्रसाद है, उसको हम किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं कान के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो भी महाप्रसाद है। और प्रभुपाद जानते थे किस प्रकार महाप्रसाद खिलाना है कौन कौन सा महाप्रसाद खिलाना है एंड चेंज इज डिवोटीज, तो ये प्रभुपाद जी की बहुत विचित्र शैली हुआ करती थी। और प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद के टाइम पे जो है प्रभुपाद ने बोला कि कीर्तन इज अ वेरी डायनेमिक सर्विस टू द लॉर्ड, हमने तो हम खाली कीर्तन कर रहे हैं हरिनाम जप कर रहे हैं बट एक्चुअली कीर्तन इज द मोस्ट डायनेमिक सर्विस टू द लॉर्ड, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर के प्रसंग में भी आता है महाप्रभु के उसमें भी और अभी भी आगे भी जब पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार की राग गाते हैं अलग अलग प्रकार के भजन गाते हैं या हरिनाम गाते हैं और भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं उसके अंदर, हो सकता है हमें वो भाव पता ना हो हमें नहीं मालूम हो कहीं स्तर पर नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए सबसे प्रैक्टिकल ये है कि हम कीर्तन करते हैं, नित्य करते हैं, भगवान के नामों को बोले जरूर, गुणगान जरूर करें, नहीं तो हमारा नित्य क्या हो जाएगा, केवल एक नाइस एथलेटिक्स, इट विल बी गुड एक्रोबैटिक्स या एथलेटिक्स, अर्थात अच्छा जो है कसरत हो जाएगा, जैसे सर्कस में कलाबाजियां होती है वैसे हो जाएगा, बट इट नॉट बी कीर्तन। और हम अगर इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, करताल मृदंग बजा रहे हैं, भगवान के नामों का जप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट विल बी शो ऑफ अवर कि हाउ नाइसली आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, तो बाहर ही बहुत लोग बजा सकते हैं, बट वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण के प्लेजर का सबसे मुख्य अर्थ है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, या खाली कीर्तन भी कर रहे हो, हाथ खड़े कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, भगवान के नामों का बहुत उत्साहित होकर और बहुत जोर से भगवान के नामों का जप करें और उसमें अपनी चेतना को एब्जॉर्ब करें। दैट इज द यू नो मोस्ट ईजिएस्ट धर्म फॉर दिस एज। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। और ये अद्वैताचार्य हैं कौन आखिरकार, हु इज ही, उन्होंने किया क्या, क्यों महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत नाच नचाया। बोले मैं आध्यात्मिक जगत में आराम से बैठा हुआ था, अद्वैताचार्य ने यह शालिग्राम शिला ली गंगा के जल से लेके और हुंकार भरी उन्होंने, बोले कि इस जगत का उद्धार करने के लिए केवल भगवान आप ही को आना पड़ेगा। बोले नाड़ा की नाड़ा बोलते थे अद्वैताचार्य को, उनकी हुंकार सुन के मैं आराम से योग निद्रा में लेटा हुआ था, मैं उठना पड़ा मुझे और यहां भौतिक जगत में आना पड़ा, वहां पर ये कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि देखो तुमने मुझे कितना नाच नचाया। प्रेजेंटल मीन दिस ऑल्सो कि मैं आराम से आध्यात्मिक जगत में लेटा हुआ था शेषनाग के ऊपर, तुमने मुझे जो है नीचे बुलाया और अब मेरे को प्रसाद खिला रहे हो और फिर कीर्तन करोगे फिर मुझे नाचूंगा, है कि नहीं। सो दैट इज वन ऑफ थिंग्स। सो अद्वैताचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो अद्वैताचार्य की कृपा से ही जो है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पंच तत्व जो है इत्यादि सब आए यहाँ पे और ये प्रचार कार्य उन्हीं की वजह से चैतन्य महाप्रभु है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी थी तो कौन अवतरित हुए थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरकार ठाकुर। और अद्वैताचार्य यहाँ पर जो है अपने जीवन अपने कार्यों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार कृष्ण भावना में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से कि हमारे पास जो कुछ भी हो दैट बिलोंग्स टू कृष्ण उसे कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। उनके पास क्या है, अद्वैताचार्य के पास उनकी वाणी है और वो गृहस्थ आश्रम में है, अच्छा प्रसाद बना के भगवान और उनके भक्तों की सेवा कर सकते हैं तो वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए उनका बिस्तर है तो उसमें किसको सेवा कर रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को जो है विश्राम करा रहे हैं और उनके चरण पखार रहे हैं और इस प्रकार से जो भी बेस्ट उनके पास है अपनी एबिलिटी के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो क्योंकि सब कुछ कृष्ण का ही दिया हुआ है ना। जो हमारे पास जो भी योग्यता है वो वास्तविकता में कृष्ण के द्वारा दी गई है और भगवान की सेवा में ही उसे इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम अपने एंजॉयमेंट के लिए भोग करते हैं तो वो चोरी कहलाती है, श्रील प्रभुपाद कहते भी थे इस बारे में। और यदि हम उसे त्याग करते हैं तो इनडायरेक्टली यही कहना है कि वो मेरा था इसलिए मैं त्याग कर रहा हूं। हमें जानना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, हमारे कोई टैलेंट्स है, धन संपत्ति है, परिवार है, हमारे पास कोई पावर है, पोस्ट है, पोजिशन है, कुछ भी है हमारे पास, ये सब कुछ भगवान कृष्ण का दिया गया है और उन्हीं की सेवा में ही इस्तेमाल होना चाहिए। लोग गाते तो बहुत हैं, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है कि नहीं, लेकिन करते क्या, भगवान की हुंडी में 10 रुपए का नोट डालेंगे और बाकी पूरा जो उनका सैलरी स्टेटमेंट है, जो ड्राफ्ट है या चेक है वो उनकी तिजोरी में रहेगा, है कि नहीं। लेकिन ये वास्तविकता में ड्यूटी बहुत लागू है। एक्चुअली हमारा वी डोंट हैव एनीथिंग, ये शरीर भी हमारा नहीं है, लेकिन यस हमें शरीर का शरीर है, हमारे पास लक्ष्मी है, कुछ भी है, कोई भी पावर है किसी के पास भी, कोई भी टैलेंट्स है, वो सब भगवान के उनकी सेवा में ही इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अद्वैताचार्य हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे भगवान आप अच्छे भोग लगाना की इच्छा है, भगवान को भोग लगाइए ऐसा है, और उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण कीजिए और भक्तों को बांटिए इस प्रकार से, और भगवान की वसना के लिए कीर्तन ग्रहण कीजिए। जिस घर में हम रहते हैं वो भगवान का घर है वास्तविकता में, ऐसा होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए इस प्रकार से कि गौर निताई का वो घर है और महापुरुष यहाँ पे आए। और अद्वैताचार्य आज क्योंकि बहुत सुंदर दिन है, आज शिवरात्रि का महोत्सव है और अद्वैताचार्य वास्तविकता में महाविष्णु सदाशिव के भी अवतार है कि नहीं, सही अहंकार सदाशिव ऑल्सो। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो भगवान का और शिव जी का बहुत ही विशेष संबंध है, ऐसा देखा जाए स्पेसिफिकली भागवतम इज मेंशन निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है, शंभू शिव जी, इस प्रकार से। और दो कैरेक्टर्स भागवतों में बहुत अधिक वर्णित है, वर्णन किया गया उनका। वन इज नारद मुनि, नारद मुनि कम्स इन ऑलमोस्ट एवरी कैंटो ऑफ भागवत, लगभग लगभग प्रत्येक स्कंद के अंदर नारद मुनि का वर्णन जरूर आता है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा स्कंद हो, लगभग शब्द नारद मुनि का प्रसंग आता है ऑलमोस्ट। मतलब अभी तक छठा स्कंद चल रहा है, छह के छह में नारद मुनि जरूर आए यहाँ तक, और सातवें में भी आएंगे जब प्रहलाद महाराज होगा आएंगे, और एट में समुद्र मंथन में भी आने चाहिए वैसे करके। यानी हाँ, और दूसरे एक कैरेक्टर है भगवान शिव, शिव जी भी कभी बहुत अधिक वर्णन आता है अधिकांश कई सारे स्कंद के अंदर, कई सारी लीलाओं के अंदर, और शिवजी के ऊपर भी कई सारी लीलाएं हैं भागवतम के अंदर। भागवतम के चतुर्थ स्कंद के तो पहले छह पांच छह अध्याय हैं दक्ष और प्रजापति, उसके प्रजापति दक्ष और शिवजी और सती सती माता के बारे में इस प्रकार से। और आठवें स्कंद में शिवजी के बारे में कौन सी लीला होती है, शिवजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कौन सा रूप दिखाइए, मोहिनी मूर्ति रूप दिखाइए, शिवजी प्रेर दें, भगवान कहते हैं नहीं आप मत देखिए, बट कृष्णा से शिवजी सेज नो 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 नथिंग विल हैपन, नहीं जाते। और जब वो मोहिनी मूर्ति का रूप देखते हैं तो शिवजी बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं इस प्रकार से, और भवानी पार्वती देवी वहीं पे हैं, सभी पार्षदों के सामने वो उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं इस प्रकार से, है ना। तो लगेगा कि ये कि, और जब शिवजी को एहसास होता है कि सब पार्षदगण देख रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं वो हृदय में कि देखिए ये है भगवान की माया, ये है भगवान की माया, इस प्रकार से कि जो है मैं ही भगवान के योग माया के अधीन हूं इस प्रकार से। सो इट्स वेरी हैप्पी दैट आई एम मेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू बी सर्व्ड बाय द लॉर्ड, लाइक दैट। ऑल दैट वाज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी के लिए एक प्रकार से एक्सटर्नल रूप से देखा जाए एक शर्मनाक स्थिति है या थोड़ी लज्जास्पद स्थिति है, लेकिन शिव जी इज वेरी एक्सटैटिक, बहुत खुश है वो। क्यों? क्योंकि देखिए मैं अपने भगवान के द्वारा माध्यम बन सका, है कि नहीं, कि भगवान ने मुझे किस प्रकार से माध्यम बनाया है और किस प्रकार से मेरे अहंकार को, अहंकार तो नहीं था उन्हें चूर किया इस प्रकार से, कि भगवान में से कितना वास्तविक में प्रेम करते हैं कि मेरे को इस प्रकार की स्थिति में डाल सकते हैं, तो ये भगवान का दिव्य प्रेम है। और फिर उन्होंने राधानाथ महाराज ने दो साल पहले मायापुर में शिवजी की ग्लोरी को प्रवचन दिया था तो बता रहे थे वास्तविकता में उसी प्रकार से भाव है जिस प्रकार भगवान शिव जो ये भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे और जब वो गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, है कि नहीं, जब वो गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं तो और कृष्ण कहते हैं कि नहीं मैं आपके वस्त्र नहीं आपको दूंगा, आप सभी बाहर आके एक एक करके वो लेके जाइए वस्त्र। तो इस प्रकार से बाह्य दृष्टि देखा जाए तो गोपियों के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, गोपियों के लिए एक ह्यूमिलिटिंग कंडीशन, एक लज्जास्पद स्थिति है, बट दे वर वेरी एक्सटैटिक टू बी यूज बाय कृष्ण एज डॉल्स, प्रॉपर यूज लाइक दिस वर्ड यूज, कि दे वर वेरी हैप्पी टू बी यूज एज डॉल्स इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण, कि कृष्ण के हाथ में कठपुतलियां होती हैं, उस प्रकार से यूज किए जाने पे गोपियां वॉज वेरी हैप्पी इंटरनली एक्सटैटिक लाइक दैट। उसी प्रकार शिवजी वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बता रहे थे कि ये वास्तविक भाव है कि कृष्ण के द्वारा यूज किया जाना हमारे द्वारा, यू नो, कई बार हम भी सेवाएं करते हैं तो हमें तिरस्कार सहन करना पड़ सकता है, वो कृष्ण का वास्तविकता में प्ले होता है, कृष्ण के द्वारा रची गई रचना होती है हमारे लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, और हमें बहुत पसंद होना चाहिए कृष्ण इस प्रकार मेरा जो इस्तेमाल किया गया, कि मेरा इस्तेमाल हुआ इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा। इसके बाद में और शिवजी के साथ बहुत सारी इस प्रकार से होती है, शिवजी के कई बारी कई शिष्य जो हैं भगवान के द्वारा उनके मारे जाते हैं, उनके एक प्रमुख शिष्य कौन थे, रावण, और भगवान रामचंद्र आते हैं उनका वध करते हैं। शिवजी के एक और भी शिष्य थे बाणासुर, और शिवजी बोलते हैं जाओ द्वारका खड़े कर, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, है कि नहीं, और जाते हैं वहां पे बाणासुर युद्ध करते हैं और कृष्ण उनका वध तो नहीं कर, पर शिवजी आते हैं थे और रुद्र ये शिव ज्वर उनके ऊपर फेंकते इस प्रकार से, और कृष्ण का सुदर्शन नारायण ज्वर, नारायण ज्वर उनके पीछे जाता है और फिर शिवजी के पीछे जाता है, और फिर शिवजी भागते भागते वापस कृष्ण चरण कमल में आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। अगर वो प्रार्थनाएं पढ़िएगा, मैं पढ़ के आज प्रिपेयर करके नहीं आया था, लेकिन सम टाइम डिस्कस, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, शिवजी इज वेरी हैप्पी इंटरनली टू बी डिफीटेड बाय कृष्ण, है ना। तो हो सकता है हमारे भौतिक जीवन में हमें खुशी होती है जब हम श्रेष्ठ पोजीशन में होते हैं, है ना, कि एक्सटर्नली जब हम बेटर पोजीशन में हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर, कृष्ण भावना के अंदर, वी शुड बी वेरी हैप्पी टू बी पुट इन अ हम्बलिंग पोजीशन, जहां हम एक नम्र स्थिति में पहुंचे हों तो हमें खुश होना चाहिए, और जो भक्त होता है वो इसी में सबसे अधिक खुश होता है। टू बिकम डिपेंडेंट इज अ स्टेट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सटेसी, टू बिकम इंडिपेंडेंट इज अ वेरी वेरी यू कैन से सैड स्टेट, वेरी डेंजरस स्टेट. भक्तन ठाकुर कहते निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया तुमार इच्छा निर्भर करिया. बोल निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, कि मैंने अपने बाहु अपने बल पर बहुत प्रयास किया, निज बल चेष्टा प्रति बहुत प्रयास किया लेकिन भरसा छाड़िया, अब मैंने भरसा छोड़ दिया. तुम्हारे इच्छा अच्छी निर्भर करिया, आपकी इच्छा सभी निर्भर करता है. किसल भक्ति पर भागवत पीछे हमें नेक्टर मिशन पढ़ा रहे थे तो वो भी बता रहे थे कि देखिए दो पोजीशन है हमारे जीवन के अंदर. एक तरीका तो ये है, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम खुद ही उसको एडजस्ट करते रहें. हमारे शरीर में दिक्कत होंगी, हमारे मन से दिक्कत होंगी, आर्थिक स्थिति हमारी खराब होगी, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की ग्रेड ठीक नहीं आ रहे होंगे, परसेंटेज ठीक नहीं आ रहा होगा, या बिजनेस है तो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होगा. और हम लोगों का जीवन किस में चल जाता है, अधिकांशतः इन्हीं प्रॉब्लम को सेटराइज करते हुए, है कि नहीं. क्या बोलते हैं, हमें याद है जब हम पास आउट हुए थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि यदि आप बैंगलोर में जाएंगे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे तो कह रहे वहां पर अधिकांश लोगों की जो सैलरी होती है 20 तारीख को खत्म हो जाती है. 5 तारीख या 7 तारीख को सैलरी आएगी और जब 20 तारीख 22 तारीख को उधार लेना पड़ता है, और जब 7 तारीख को आते हैं सैलरी मिलती है तो उसमें आधा सैलरी तो पहले उधार पर चली जाती है, है कि नहीं. और बाकी 15 दिन में जो उनकी सैलरी होती है उनको मोबाइल्स के बिल देने हैं, बाइक के पेट्रोल का बिल देना है, क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, इंटरनेट का बिल देना है, पार्टीज का बिल देना है, सब इतना सारा, तो सारा पैसा खत्म हो जाता है ना. तो यू नो लोगों का जीवन किस में जाता है, कमाओ और बिल्स देते जाओ ऐसे करके, है कि नहीं. तो बस इसी में जीवन निकल जाता है. एक बार देखा जाए जीवन की प्रॉब्लम सेटराइट करते हुए, अब आप पढ़ाई आ गई, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर घर में कोई समस्या है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन ये समस्या है, वो समस्या है, कभी इनकम टैक्स की समस्या आ गई, तो कभी कानून समस्या आ गई, कभी पारिवारिक समस्या है, ये समस्या सेट करते रहते हैं. और ये करते 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 क्या होता है, अंत में अधिकांशतः लोगों का अपना शरीर खराब हो जाता है, फिर उसको ठीक करते रहते हैं, है कि नहीं. पूरा जो है उनका जीवन देखिए खाली प्रॉब्लम से सॉल्व होती रहती है. दूसरा तरीका, तो एक तरीका तो ये है कि हम खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, बिना बुलाए आएंगी. तो एक तरीका तो हम जीवन में अपना सकते हैं कि हम केवल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें. दूसरा तरीका यह है कि हम भगवान की शरणागत हो जाएं, भगवान को बोलें आपकी दी गई समस्याएं हैं, आप ही सेटराइट करो, मैं तो आपकी भक्ति करने जा रहा हूं. आप बताइए कौन सा अच्छा समाधान है, क्योंकि कृष्ण जो हमारे लिए पोजिशन बनाई है ही विल बेस्ट फिट इन दैट पोजिशन. अगर मान लीजिए ये हमारे लिए, ये कृष्ण का प्लान है कि हमारे शरीर में कष्ट रहे ही रहे, हमारे को आर्थिक समस्याएं आए ही आए, तो हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई कैन एक्सेप्ट योर प्लान, कि आप ये आपका जो विचार है सहन करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसा है. आप मुझे वो दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो चाहे मत करो. लोग गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, आए चाहे ना आए, लेकिन भगवान मेरे को शक्ति दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों कभी ना भूलूं. क्यों, कृष्ण अरेंज देन फॉर एवरीथिंग. कृष्ण झूठ थोड़ी बोल रहे हैं गीता के अंदर, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्. कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो कमी होती है उसको पूरा करता हूं. मतलब कृष्ण दिया है, बस कंडीशन क्या है, अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मैं चिंतन करना है. तो कृष्ण का वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, इफ आई डिपेंड ऑन कृष्ण वी आर सेफ, अगर अपने आश्रय में करेंगे तो हम सेफ नहीं हैं. और कैसे हम सेफ्टी दे सकते हैं, सभी देवता गण समुद्र मंथन जब लीला, जब सभी देवता लोग जो हैं वो हार गए थे युद्ध के अंदर, और सब किसके पास जाते हैं जब हार जाते हैं, तो इंद्र और सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए. वो उनको लेके कहां गए, भगवान विष्णु के पास. भगवान ने बोला अभी तो आप संधि कर लो असुरों के साथ, और फिर क्या करो, मिलके दोनों क्या करो, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत बहुत सारी चीजें निकलेगी, लेकिन आप लोग आसक्त मत होना, और अमृत निकलेगा उसका पान कर लेना, और मैं खुद वहां पे आऊंगा. फिर कूर्म अवतार की लीला होती है, और जब वो समुद्र का मंथन करते हैं सबसे पहले क्या निकलता है, साधारण विष नहीं है वो, हलाहल विष ऐसा है, पूरा ब्रह्मांड उसके मतलब उसके ज्वाला जल रहा होता है इस प्रकार से. अब कौन स्वीकार करेगा उसको, देवी और देवता दोनों, जितने देवता और असुर देवासुर दोनों ही परेशान, अभी क्या करें इस पॉइजन का, और सब लोग परेशान हो रहे हैं उसके साथ में. और भगवान वहां पे 3 अवतार लिए थे, नीचे कूर्म अवतार थे, उससे पहले कृष्ण आए थे मंदर पर्वत को उठा के गरुड़ जी से उन्होंने सेट किया था, फिर भगवान उसके ऊपर ही बैठे हुए थे, पत्थर मंदर माउंटेन के ऊपर भगवान बैठे हुए थे लीला के अंदर, और फिर देवताओं के साथ भगवान अजीत के रूप में थे इस प्रकार से। तो भगवान बोलते हैं अभी हम शिव जी के पास चलते हैं। भगवान खुद भी ज्यादा ड्रिंक कर सकते थे, भगवान के लिए कोई मुश्किल बात थोड़ी है कि नहीं। भगवान ने बोला नहीं, अभी हम लोग शिव जी के पास चलते हैं। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि कृष्णा वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज। भगवान शिव जी को जाते हैं और शिव जी ने देखा अच्छा पूरे संसार के लिए कष्ट आया हुआ है, एंड ही इज टॉप मोस्ट वैष्णव बींग कंपैशनेट, क्योंकि बहुत अधिक दयालु है। प्रभुपाद जिनके बहुत सारे गुणों की रचना कर चर्चा करते हैं, उसमें से एक गुण है मोस्ट मैग्नानिमस, मोस्ट मर्सीफुल, इसलिए सबसे बड़े वैष्णव है, क्योंकि वैष्णव पर दुख दुखी। तो जब शिव जी ने देखा कि संसार पे सब प्राणी में इतना संकट आया हुआ है, उन्होंने क्या किया, लिया पूरा विष और अपने गले में धारण कर लिया, उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ। इस प्रकार से तो पॉइंट इसकी जब हम भगवान की देवताओं के पास सबसे सेफेस्ट पोजीशन थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की हुई थी, एंड शी ड्रैंक इट, पूरा का पूरा जो विष था उन्होंने पी लिया, एंड देन गॉड्स वाज सेफ। इस प्रकार से और आगे जाके वही मोहिनी मूर्ति से फिर दैट लॉर्ड शिव अगेन सी दैट मोहिनी मूर्ति। तो ये पूरा पास्ट टाइम इस प्रकार से है। और शिव जी इतने दयालु हैं, प्रबल बात है कि बहुत दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? उनके एसोसिएट्स कौन, उनके संगी कौन है, भूत पिशाच प्रेत, यू नो सर्प अपने गले में डाल के रखते हैं। वो रहते कहां पे हैं, शमशान घाट के अंदर, है कि नहीं? मतलब क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारे जीव जो है पापी हैं और उनको स्थूल शरीर ही प्राप्त नहीं होने वाला, इतना अधिक पाप किया है। जो भूत प्रेत होते हैं क्या होता है, उन्होंने इतना अधिक पाप किया होता है कि उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता। इच्छाएं होती हैं उनके अंदर, लेकिन क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है तो इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे वो, है कि उनका केवल सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार तीनों है, इच्छाएं सारी अंदर है, तभी तो वो सब ना लोगों के स्थूल शरीर के पीछे भागते हैं। शिव जी उनके पास रहते हैं ताकि उनका उद्धार कर सके। आप सोचिए कौन सोचेगा भूत प्रेत के बारे में, दैट इज भगवान शिव, लॉर्ड शिव लाइक दैट, यू नो सब ये भूत पिशाच और सांप जितने विषैले जीव हैं उनके पास जाके रहते हैं। दैट इज लॉर्ड शिव सो कंपैशनेट। और वही कंपैशन के बाद अद्वैताचार्य के अंदर भी था, यू नो कि जब समाज के अंदर देखा उन्होंने कि ये धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है, पाखंड हो रहा है, तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना को भगवान नहीं वो जो है अस्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार से कृष्ण चाहे तो खुद भी आ सकते थे, अद्वैताचार्य का माध्यम बनाया उन्होंने। ऐसे भगवान रामचंद्र जब थे तो रामेश्वर गए, वो रामेश्वर ने सेतु बंद पे उन्होंने की किसकी, शिवलिंग की पूजा करी, शिवलिंग, क्यों, टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज, कि देखिए हम भी शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार से कृष्णा गेट्स लॉट ऑफ प्लेजर इन सर्विंग हिज ओन डिवोटीज। और दूसरा शिला प्रभुपाद जी शिव जी के बारे में दो और गुणगान करते हैं कि शिव जी एक आदर्श गृहस्थ हैं। तभी तो बोलते हैं कि जिसको अच्छे पत्नी क्या वो हो कोई चाहता हो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए, उमा, और जो स्त्रियां होती हैं उन्हें अच्छा पति चाहिए तो शिव जी, और अदर ग्राउंड, हाँ तो उनकी करनी चाहिए, कि शिव जी आदर्श गृहस्थ हैं वो बताते हैं इस प्रकार से। और उसके पापा बताते हैं शिव जी आदर्श गृहस्थ क्यों हैं, क्या उनका घर भी नहीं है उनके पास घर भी रही है राइट जान, एंड सती इज द मोस्ट चेस्ट लेडी, भवानी इज द मोस्ट सबसे पति स्त्री है वो है सती, यू नो राइट जान। तो बता दें क्यों, एंड प्रभुपाद एक्सप्लेन दिस ऑल्सो दैट वाइल चूजिंग मैरिज, यदि विवाह के संबंध में भौतिक दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति के पास कितना एजुकेशन है, कितना धन है, क्या परिवार है, या क्या उसका क्या बोलते हैं घर है या वेल्थ है, that is not so important in marriage. So the spiritual credibility is most important in marriage. ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं तीसरे स्कंद के अंदर, और शिव जी का एग्जाम्पल देते हैं स्पेशल करके उसके अंदर। माता देवहूति को भवानी से कंपेयर किया गया था कि भवानी की तरह उन्होंने करदम मुनि की सेवा करी। तब प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविकता में विवाह के संबंध के अंदर भौतिक गणनाएं ठीक है कुछ हद तक वैल्यू कर सकती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए वो है कि व्यक्ति का स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। इस प्रकार से एंड देन Shiva is always absorbed in chanting the holy names of the Lord. You know, Brahma bole chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva panchamukhe Rama Rama Hare Hare. तो शिवजी जी जो है हर समय क्या करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, राम 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 इस पर से भगवान के नाम का जप करते हैं। लेकिन जब शिवजी मायापुर में आते हैं तो क्या नाम जप करते हैं वो, गौरा 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 ही चैंडिंग लाइक दिस गौरांगा। तो वैसे वाराणसी है तो बहुत, तो वहां पे दो घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं शरीर छोड़ने के लिए कि उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि बताया गया कि वाराणसी काशी के क्षेत्र में यदि कोई शरीर छोड़ता है तो शिव जी आते हैं, उसके कान में क्या जपते हैं, राम राम जपते हैं, और उससे जो है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वही काशी नहीं, महावाराणसी कहां पे है, गोद्रुम द्वीप के अंदर, हरिहर क्षेत्र के अंदर। अब भगवान का इतना प्रेम है कि वो आधा हरि और आधे क्या है, हर, अर्थात शिव जी, लॉर्ड विष्णु, और ऐसा कंबाइंड जीती है हरिहर क्षेत्र के अंदर, गोद्रुम द्वीप के अंदर। और वहां पे महावाराणसी के अंदर यदि कोई शरीर छोड़ता है तो शिव जी आके क्या करते हैं, क्या उसके नाम और उन्हें क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, गौर प्रेम वासी प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो और इसीलिए नवदीप धाम के अंदर सारे देवी देवता और सभी कुमारा षड गोस्वामी और देवी देवता आके यहाँ पे जो है तपस्या करते हैं नवदीप धाम के अंदर। तो वही अद्वैताचार्य यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं और अपने आचरण जब सिखा रहे हैं कि इस पर हमें सेवा करनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, श्री शिवरात्रि महोत्सव की, नीलकंठ भगवान महादेव की, गौर देवानंदे हरे कृष्ण।